ชีวิตของพลังโอ้ยใหญ่ดีนะ
उद्यम से तो दम मिटे, उद्यम से दम आए, बनो दमी हो आदमी, कदम कदम जम जाए। इसी स्थान पर 5 वर्ष पूर्व में पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ था और उस जनता समूह को देख करके ये भाव व्यक्त हो गए थे, कोई त्योहार आ जाए अपने अपनी मांग कर सकते हैं, बच्चों की मांग तो आप जानते हैं। तो धार्मिक आयोजन होते ही तो केवल नहीं रहना चाहिए, यहां से जाने के उपरांत ही इसका एक प्रारूप बनना प्रारंभ हुआ था। समय पर आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा अथवा आगे हो जाएगा। आज इस बात को देख करके लगता है कि वस्तुतः जिस दिशा में हम देखते हैं वही जो विराट भी संकुचित रूप धारण कर लेता है। यदि चाहें किस ढंग से परिणामों को उद्भूत किया जाता है तो वह उद्भूत कर और एक तरफ 0 वाट करंट दोनों लाइनों में है। जब आप अपने परिणाम को बड़ी लाइट को जलाने कर देते हैं तो बटन नहीं है कि हम चाहें ऐसे परिणाम करें तो वह करंट बाहर आ सकती है। ये बहुत बड़ी आयोजन होगी लेकिन अब लग रहा है धर्म उद्देश्य में रहता है इसलिए धर्म गौण हो जाता है। जब वह धर्म की तो धन हाथ का जिसके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा था, घंटा सवा घंटा मुझे ही बैठना पड़ा। इसलिए क्या कह रहा है यू कर दो तो यू निकल जाए लेकिन नहीं निकल पा रहा, कहीं गोंद चिपक गई क्या चिपक गई है, करंट ने पकड़ रखी है बाहर आने नहीं दे रहे। वह विराट का है धार्मिक भावना के साथ ही संपन्न है। आप लोगों ने भावना प्रारंभ कर दी और वह निश्चित है। मैं बार बार यह कहा करता हूं साधना अभिशाप को वरदान बना देती है तो भावना पाषाण को भगवान बना देती है। किंतु विवेक के स्तर पर नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है, हमें शैतान बन जाते हैं। हमारा जीवन ही हमारे लिए और पर के लिए वरदान सिद्ध हो जाता है और हमारे परिणाम ही हमारे भावना ही हमें सामने भगवान को खड़े कर देती है। भगवान कभी आते नहीं बुलाने से, किंतु कहीं भी हो हम थोड़ी सी भावना कर देते हैं तो करंट से बाहर अपने आप आना ही पड़ता है। प्रत्येक आत्मा में वह भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है किंतु वह वासना का दास बना हुआ है, इंद्रियों का वह गुलाम बना हुआ है, मन का चाकर बना हुआ है। इसलिए उस गुलामी के कारण उस चाकरपन के कारण वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं कर पा रहा। ये धार्मिक आयोजन जिसके माध्यम से हम अपनी भावना को वह विराट रूप दे सकते हैं जो हमारे भीतर वह ईश्वरत्व वह भगवत पद विद्यमान है आ सकता है। एक छोटा सा कार्य समझते हैं किंतु वह विराट रूप धारण कर सकता है। जिसके माध्यम से एक साध्य ने कहा था कि हम पर के लिए नहीं कर रहे हैं, यह हमेशा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम पर के लिए नहीं नहीं कर रहे हैं किंतु पर को निमित्त बना करके अपने लिए कर रहे हैं। हम दर्पण नहीं देख रहे हैं किंतु दर्पण के बहाने से या दर्पण में हम अपने आप को देख रहे हैं। यह आयोजन पर के लिए नहीं, स्व के लिए है। लेकिन कहने में यही आता है कि यह बहुत कैप्सूल गोली होती है। अर्थ क्या होता मैं समझता नहीं था, कैप्सूल का अर्थ क्या होता है। तो सुनने में यह आया वो एक टोपी होती है, तो टोपी मतलब टोपी गोली की रूप में रहती क्या? नहीं, उस भीतर जो दवाई है उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए ये ऊपर से टोपी पहनाई जाती है ताकि उसकी सुरक्षा हो जाए। गोली जो जो भी बोल रहे थे उनको टोपी पहनाया जा रहा था। हमने सोचा ये सुरक्षा का प्रावधान बहुत अच्छा, कैप्सूल तो है ही, अब उसकी टोपी की क्या आवश्यकता है? उस मेडिसिन को, उस दवाई को, उस औषध को कहीं बाहरी हवा धूप लगने जाए इसलिए सुरक्षित किया जाता है। और उसको खाने के उपरांत वह जो ऊपर का कवच है, कवच है जहां जिस स्थान पर जाने के उपरांत उसको काम करना उसी समय वह पिघल जाता है और वह मिल जाता है पेट में और भीतर का जो औषध अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। ये आयोजनाएं केवल इसी के लिए हैं कि समय पर आपके धन की जो ये टोपियां ये गल जाए, लेकिन ऐसे वज्र की बनाकर के आप पहन लेते हैं जैसे कोई मिलिट्री के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच पहनाया जाता, वो पहना हुआ कभी बदलता ही नहीं, यहां तक कि वह कवच उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। धन एकमात्र कवच का ही रूप धारण कर ले और वह उस स्थान पर जाकर के पिघल जाए और भीतर का पहना दवाई का काम प्रारंभ कर दे। वह यदि कवच, वह टोपी, वह कैप्सूल यदि नहीं पिघले तो ध्यान रखिए कितनी भी गोली आप खा लो आपका रोग ठीक नहीं होगा। विज्ञान ने उस औषध की सुरक्षा के लिए इतना अपने मेहनत करके ये काम किया है। जैनाचार्यों ने, संतों ने इसी प्रकार का काम किया है कि समय समय पर वह कैप्सूल पिघल जाए, जिस स्थान पर पिघलना चाहिए उसी स्थान पर पिघल जाए, बिना बोली के तो बिना बोली के भी पिघल जाए, बोली के लिए थोड़ी ज्यादा समय लग जाए तो ज्यादा जल्दी पिघल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिघल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इधर बहुत सारे करंट तो समाप्त हो जाए और जीरो वाट का लग जाए, ये ठीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात समझ में आ गई महत्व किसका है, धन का नहीं धर्म का। हाँ, उस धन का भी महत्व वहां पर है उचित समय पर ताला खुल जाते हैं, उचित समय पर गोलियां आ जाती हैं, उचित समय पर बिना कहे उस द्रव्य का प्रयोग हो जाता है तो बहुत स्व और पर के लिए दोनों के लिए कार्य हो जाता है। ये ध्यान रखना। आप लोग जिस ओर परिणाम कर रहे हैं उसमें पर का निमित्त भला हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपके तो निश्चित है दूसरे का एकमात्र भला हो, ये निमित्त है। यह हम परिणाम कर रहे हैं, दर्पण के माध्यम से अपने मुख को देखने का प्रयास चल रहा है, दर्पण को नहीं देखना इतना ध्यान रखना। यह मतलब आप दर्पण नहीं देखते, दर्पण में देखा चाहिए। बस आप धन को न देखिए, धन में उसकी उपयोगिता देखिए, तो फिर अवश्य ही कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो यहां पर फावड़ा चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह ध्यान रखना, वो लोग नहीं अर्जित करे जावा आ जाए, अर्थ नहीं किंतु परमार्थ से हमारा जीवन जुड़ता चला जाए, परिणाम हमारा परमार्थ हो सकता, धन नहीं, शब्द नहीं, तन नहीं, तन से, मन से और धन से और वचन से सबसे परे वह चेतन हुआ करता है। भावना पाषाण को भगवान बना लेता। आप मदराने से पाषाण को ले आ सकते हैं, पाषाण को खरीद सकते हैं, लेकिन मकरान के भगवान नहीं मिल सकते। भगवान का आरोपण अपने परिणामों के ऊपर आधारित है। भगवान में कोई मूल्य नहीं हुआ करता, किंतु जो यहां उस पाषाण में उस प्रभुत्व का स्थापन करते हैं, सूर्य मंत्र के माध्यम से विधिवत विधान करके, तो फिर हम अपने आप ही उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनका मूल्य क्या है अनमोल कह देते हैं। आप ही तो प्रतिष्ठा करने वाले हैं, आप ही तो जाप देने वाले हैं, आप ही विधान करने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं। अब कितना मूल्य कितना है? अब भगवान का कोई मूल्य नहीं, उसके वेट कितना भी है उसका कोई अभार नहीं, क्योंकि अब हम अपने भगवान को तोड़ नहीं सकते, वे तो अतुलनीय है। मूल से नहीं बिक सकते, वे तो अनमोल है। वही व्यक्ति समझ सकता है इस महत्व को जिसके पास इस प्रकार के परिणाम विद्यमान रहता है। नहीं तो वह व्यवसायिक दृष्टि से देखेगा तो भैया इसकी कीमत तो बहुत कम आ रही है। बोलियों की ओर भी आप लोगों को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि 50,000 आ जाए तो ताली बजा, ऐसा नहीं। कि भावना के साथ जुड़ा हुआ यह खेल है। ऐसे ऐसे श्रमिक भी हैं जो संग्रह को रूप देते हैं और समय पर उनका वह द्रव्य पिघल जाता है। एक दुशिक्षिका के रूप में आए और उन्होंने दान देते 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 हम तो करते चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, भरोसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर ये भावना तो कर रहे हैं। इसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, बहुत स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान रखना, दूसरे के लिए नहीं दे रहे हैं। अब रवाना होने का समय आ गया है, आगे का भी तो प्रबंध करना चाहिए। निश्चित बात है कि स्वार्थ के लिए भी युक्ति की आवश्यकता होती है, अध्ययन की आवश्यकता होती है। केवल आप संग्रह कर रहे हैं इसलिए आपके साथ आ जाएगा संभव नहीं है, किंतु संग्रहित द्रव्य साथ नहीं आता, परिणामों के द्वारा जो अर्जित द्रव्य है वह आपके साथ कहानत तक चला जाता है। ध्यान रखना, पुराण ग्रंथों को पढ़ो तो किस ढंग से वह फलीभूत हो जाते हैं। इसलिए भावना पाषाण को वरदान और साधना अभिशाप को वरदान बना देते, भावना पाषाण को भगवान। आपने 2-3 वर्ष के भीतर जो साधना का संकल्प उठाया, साधक तो पहले भी यहीं पर थे, आते थे हमारे पास और चले जाते थे, पहले भी नमस्तु करते थे और आशीर्वाद भी मांग करके ले जाते थे, लेकिन वो सारे सारे आशीर्वाद हमारे कोई फलीभूत नहीं मिले, समझ में नहीं आ रहा। या तो आशीर्वाद में कमी है या तो नमस्तु में कमी है। तो आप ये कहेंगे महाराज आपके आशीर्वाद में कमी हो सकते, तो मैं भी कह सकता हूं आपके नमस्तु में भी कमी हो सकते। सही पूछा जाए तो यही बात है, हम आशीर्वाद तो यही देते आए, लेकिन वह योजना आयोजना एक पंचकल्याण के जो बनी थी एक अलग ही टाइप की थी, अलग ही उद्देश्य को लेकर के थी। और वह मंगलाचरण एक ऐसा मंगलाचरण सिद्ध हुआ, अब ये कितनी बार मंगलाचरण करवाता पता नहीं लगता, ये तो मंगलाचरण ही होता चला जाएगा। ये द्वितीय पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत भाग्योदय के माध्यम से 3 वर्ष के अल्प समय में, मैं तो इसको अल्प समय इसलिए नहीं समझ सकता, यदि आपका दूसरा कोई कार्य होता तो इससे भी अल्प समय में इससे भी बहुत बड़े बड़े भूमि के निर्माण हो सकते हैं और होते आए हैं, इसलिए इसको तो मैं अल्प समय तो नहीं समझूंगा। हाँ ये बात है कि इस पूरे समाज के माध्यम से हो रहा, इसलिए इसके लिए समय अल्प ही लगा, क्योंकि सामाजिक कार्य जब कभी भी होता उसमें मीटिंग्स बहुत होती, फिर मीटिंग है तो फिर ईटिंग भी चाहिए, फिर सिटिंग भी चाहिए, फिर भी हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कम मीटिंग्स अटेंड करते हुए कम सिटिंग के द्वारा ये बिल्कुल स्टैंडर्ड का काम जो प्रारंभ हुआ है, ये तो धन्यवाद का पात्र तो है। लेकिन अभी ताली बजाओ मत, क्योंकि अभी शुरुआत है, शुरुआत में यदि ताली बजने लग जाए और इसी में मगन हो जाए तो आगे काम गड़बड़ होना चाहिए। उत्साह तो आवश्यक है। आप लोगों ने यह जो संकल्प लिया बहुत अच्छा लिया, इससे कि धर्म को हम एक मूर्त रूप देखने का प्रयास कर सकते हैं। अभी तक धर्म एकमात्र कानून के माध्यम से सुनने की वस्तु रही है, और आज का शोध का युग होने के कारण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं संतों के द्वारा लिखे हुए हैं वो सारे सारे छन गए, थीसिस के रूप में आ गए सामने, लेकिन फिर भी धर्म थीसिस के रूप में ही आया, पढ़ने के रूप में, पढ़ाने के रूप में आया, विश्वविद्यालयों में भी इसका प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन फिर भी धर्म की पहचान हम अभी तक नहीं कर पाए। धर्म हम जीवित अवस्था में देख सकते हैं और देखते आए हैं। यह एक ऐसा अवसर है, हम धर्म को अपने दुकान में भी देख सकते हैं, धर्म को अपने मकान में भी देख सकते हैं, धर्म को हम यात्रा करते समय में भी देख सकते हैं, धर्म को हम पढ़ते समय भी देख सकते हैं, और धर्म को हम देखते समय जानते समय भी देख सकते हैं। वह तत्भाव परिणाम है माना जाता है, वह एक आत्मा का परिणाम है, वह एक आत्मा का गुण का परिणाम है, जिसमें हम धर्म की पहचान प्रतिबिंब के रूप में दे सकते हैं और एक प्रकार से जीवन के रूप में देख सकते हैं। हम दर्पण को न देखिए, दर्पण के पास चले जाएं, लेकिन हम दर्पण को न देखिए। आप अभी दर्पण नहीं, जिन जिनके आंखों के ऊपर चश्मा लगाए, आप चश्मा को देखते हैं क्या चश्मा से देखते हैं, थोड़े से विचार करके आप बता दें, क्योंकि हमारे पास तो चश्मा नहीं। आप चश्मा को देखते हैं क्या चश्मा से देखते हैं, बस इतना ही करना है। आप धन को देखते हैं तो फिर उससे आगे नहीं बढ़ सकते, धन से देखते हैं तो फिर धन ही रह जाता है, तन यही रह जाता है, वचन यही रह जाता है, सब कुछ यही रह जाता है, और वह केवल हमारा जो पारदर्शित्व अपने आप शुद्ध हो जाता, उस चेतन तत्व तक हमारी गति अपने आप हो जाती है। दर्पण को नहीं देखना किंतु दर्पण में देखना, और दर्पण में कभी भी दर्पण नहीं दिख सकता, और दर्पण वहां पर चरितार्थ हो जाता है। दर्पण दर्पण में दर्प न, दर्पण में दर्प न, एक करोड़पति भी आ जाए दर्पण के सामने तो भी वह खुशी नहीं मनाता, और एक व्यक्ति दीनहीन भी आ जाता है तो भी वह खुशी नहीं मनाता। वह इतना कार्य करता है कि जो आप मेरे सामने आ गए, दुनिया को आपने देखा होगा लेकिन दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपको दिखा सके, तो मैं वह कार्य करता हूं आपको दिखा दूंगा। और दर्पण के सामने कोई भी आ जाए, करोड़पति तो झलक उस दर्पण में नहीं मिलेगा, केवल अपनत्व का ही दर्पण मिलेगा। इसलिए दर्पण में दर्प नहीं हुआ करता है, वो दर्पण में तो दर्पण हुआ करता है, वह केवल आपकी छवि का ही अर्पण उसमें रहता है। प्रभु के सामने हम पहुंच जाते हैं, प्रभु को देखते हैं, लेकिन कुछ ही समय के उपरांत अपना भान होना प्रारंभ हो जाता है। पंच कल्याण महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव और बिंब स्थापना का केवल एकमात्र उद्देश्य रहता, आज तक हमने पर को तो जाना और देखा, लेकिन वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ अपने आप को पहचानने का, जो हम उसके माध्यम से पहचान लेते। भगवान को नहीं पहचानना, किंतु भगवान को देखने से अपने आप ही उनके माध्यम से अपनी पहचान हो जाती है, इसलिए उस भगवान का कोई मूल्य नहीं हुआ करता। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझता है तो वह व्यक्ति समझता कि भैया हमने तो मूर्ति को नहीं देखी, हमने तो पाषाण के सामने नहीं खड़ा किया अपने आप को, किंतु आज हमने आज सौभाग्य प्राप्त किया उस वीतराग छवि का दर्शन करने का, और उसका कोई प्रदर्शन नहीं हुआ करता। मूर्ति का प्रदर्शन हो बस हो सकता है, लेकिन मूर्ति में जो अपनत्व है, प्रभुत्व है, उसका प्रदर्शन नहीं हो सकता, उसका दर्शन हो सकता है। तो आपने जो सेवा का एक आयोजना उठाई अपने हाथ में, तो सेवा का कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। जिस समय सेवा करते हैं उस समय हम कहां पर रहते हैं ये पता नहीं रहता। जिसकी सेवा की जाती है उसके स्वभाव तक पहुंचाने का प्रयास यदि अवसर प्राप्त होता है तो वही एकमात्र घड़ी है जिस समय आप अपने आप को भूल जाते हैं। डॉक्टर लोग, वैद्य लोग अपने आप को तब भूल जाते हैं जब रोगी के रोग में वो उतर जाते हैं, कटिबद्ध हो जाते हैं कि हमें उस रोग को हटाना, रोगी को नहीं। चिकित्सा रोगी की नहीं होती है, वैद्य लोग समझे, डॉक्टर लोग समझे, चिकित्सा रोगी की नहीं, रोग की होती है, लेकिन रोगी के अनुसार नहीं चल करके होना चाहिए। चिकित्सा रोग की होती है और जो ही वह रोग समाप्त हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, तो वह स्वभाव पर आ जाएगा। आप लोगों का लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। जितना दर्पण साफ सुथरा होगा, जितना आपका चश्मा साफ सुथरा होगा, जितनी आपकी दृष्टि साफ सुथरी होगी, उतना ही आपको काम अच्छा लगेगा और उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। प्रतिशत में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? शत नहीं किंतु प्रतिशत। आज का युग 33% में ही सफलता का अनुभव करता है। जब मैं पढ़ता था उस समय 36 नंबर आवश्यक थे, ये 3 कम हो गए। महाराज आपसे भी हम लोगों का सौभाग्य हो जाता है, क्योंकि 3 नंबर लिए बिना हम पास कहलाते, आपको 3 और लेना पड़ता था। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, शत को दृष्टि में रखना चाहिए। प्रतिशत तो दुनिया में अनंत काल से आता ही आया है, और ये ध्यान रखना 1% भी अपने आप में मूल्य है। 1% तो वह जमीन से 1 अंश तो ऊपर उठा है, निश्चित बात है। उसी प्रकार यदि विकासशील हम अपने आप को बना लें तो निश्चित 100 में हम गर्वित हो सकते हैं। 100 के प्रयास करने के लिए अब आपको कितना प्रयास, कितनी साधना अपेक्षित है आपको देखना है। ताली जो बज रही है केवल 33 में ही, इतना तो आवश्यक बजना तो चाहिए, लेकिन 33 में ही आप अपने आप को पास कहेंगे तो हम उसको पास नहीं कहता हूं किंतु नियर, जैसा मतलब पास आया है, आया नहीं अभी पूर्ण, लेकिन पास आया है। पास तो अभी और आना है। जो 33 नंबर में पास हो जाते हैं उनके लिए अभी 67 नंबर में फेल है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो फेल होने के प्रतिशत क्या है आप लोगों का? 67 तो संख्या ये ज्यादा है, इसलिए बाजार में अभी आना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, बाजार में अभी आना ही नहीं चाहिए, और उन 67 नंबरों को भी लाने के लिए प्रयास और करना चाहिए। लेकिन आज बाजार में स्वागत 33 नंबर वालों को हो जाता, भैया हम इस प्रतिशत से मान्यता नहीं देना चाहते। आपके पास शक्ति तो है, इतना अवश्य इतना कहेंगे, देखो पहले आपके पास 1 भी नंबर नहीं था, अब 33 नंबर आ गए, बहुत अच्छा काम किया, जितना किया उतना अच्छा किया। और ये तो देख लो अभी बहुत करना है, अभी बहुत करना है। और इतने में जब आप इतनी सफलता का अनुभव कर रहे हैं तो और 67 देखो उस समय क्या होगा, फिर बाद में भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रहता है। वह इतनी एकाग्रता आ जाती है, इतनी एकाग्रता आ जाती है, किंतु दर्पण को नहीं देखना, दर्पण में देखना, और दर्पण में क्या दिखता आपको, और कुछ नहीं दिखता, अपनत्व ही दिखता है। आप सेवा के क्षेत्र में उतरिए। जैन समाज वस्तुतः सेवा तो करती है, लेकिन सेवा करते हुए भी वह मौन सेवा होती रहती है। इसकी सेवा करने वाला कुछ कहे कि कोई नियम नहीं,
लेकिन कुछ ऐसे भी मंच आवश्यक होते हैं जो कि वहां पर अन्य ग्राहक आना चाहते हैं वो नहीं आ पाते। ये जो मंच का निर्माण आपने कर लिया बहुत अच्छी बात हुई है, जिसके माध्यम से ये सारे सारे भेद समाप्त हो जाएंगे और सेवा क्या होती है, किसकी होती है, किसकी होनी चाहिए, अपने आप आपके सामने उद्देश्य आकर के खड़ा हो जाएगा। और ये जो आयोजन होती है, इन आयोजन के निमित्त से अर्थ का जो सदुपयोग करने का जो एक मार्ग खुल जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। दान देना है लेकिन इस ढंग से देना ताकि प्रत्येक व्यक्ति उस ओर आकृष्ट हो सके कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। आज तक प्राय करके पंचकल्याण इत्यादि के माध्यम से जो अर्जित होता है, आपके जो कोई भी उपास स्थानों में धन का अर्जन है, वो उसी के विषय में रह जाता, जबकि इस प्रकार सक्रिय कार्य के लिए उसका योगदान होना चाहिए। यदि धीरे धीरे आप लोगों में यह बीज बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो धार्मिक क्षेत्रों में अर्जित धन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, यदि चाहें तो उसको प्रचलन में लाएं, तो बड़ी बड़ी योजना करने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे भी बहुत लंबी चौड़ी योजना भी मिनटों में काम आ सकती है। गवर्नमेंट जो सोचती है वह इस बात को लेकर के सोचती है कि धन का सदुपयोग हो, कहां तक होता है वो ही जानते हैं। एक मुख्यमंत्री महोदय से ज्ञात हो गया था कि ये पंचवार्षिक योजना जो भारतवर्ष में होती है और उनमें जो अर्थ का बजट बनाया जाता है उसका 17 पैसे ही काम में आता, और मुख्यमंत्री के मुख से ये सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि ये कैसी बात है, तो कितना पैसा नहीं आता, ये करोड़ में केवल 17 लाख काम आता और बाकी कहां जाता है। इसी को बोलते हैं जो बारी ही उठ करके खेत को खा जाती है। तो इस प्रकार की योजना नहीं होने के फल है। वो अभी जो मंत्री महोदय ने कहा था ना, उन्होंने कहा कि 35 वर्ष के उपरांत मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के लिए परमिशन मिली। इसमें हमने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज के लिए 35 वर्ष के उपरांत मिली नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ की बात थी। मध्य प्रदेश में तो यह प्रथम अवसर है, तो यह यदि चाहें तो इस ढंग से सेवा के लिए आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट कहां कहां तक काम करेगी, अभी भी यदि चाहें तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस सेवा के क्षेत्र में आप लोगों को इस प्रकार आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट की सरकार के सामने कह देना चाहिए कि हम सेवा करना चाहते हैं। सरकार की भी ये नीति होनी चाहिए जो सेवा करना चाहता है उसको सेवा का मौका दे देना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम योग्यता का मूल्यांकन सही सही कर सके। योग्यता के मूल्यांकन के बिना सेवा का भी रूप सही सही सामने नहीं आ सकता, और आना चाहिए। सही कार्य तभी हो सकते हैं जिस क्षेत्र में जितनी योग्यता की आवश्यकता है, और उस योग्यता यदि है तो उसको दे देना चाहिए। इससे क्षेत्र की उन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, और मुख्य तो यह है अपनी आत्मा की उन्नति होने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। समय कम है इसलिए मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं। आज मंगलाचरण ही समझ लो कि आगे की जो कोई भी योजना है विधिवत आप समय का सदुपयोग करते हुए करें, क्योंकि जनता बहुत दूर से आती है, बोलियों में ज्यादा समय न निकाल करके। और दान घोषित करना तो पहले से ही आप किट लेकर के आया करो, क्या बात हो गई, एक साथ और ये लाइन लगा दी यहाँ पर और एक साथ वो बोलते चले गए प्रेजेंट सर।
एक बार आए उनको बुलाए दोबारा घोषित कर दे नाम गलत हो गया ऐसा भी नहीं, लाइन लगा करके आ जाए, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं और भर्ती कर दे। कितने कॉलमों की आवश्यकता उनको पूछ लेना, ज्यादा और नहीं बढ़ाना, क्योंकि अभी तो 300 ही कह रहे हो 500। ऐसा नहीं करते, सेवा के लिए जिस व्यक्ति के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो अपने आप ही आ जाएगी, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भावना पैदा कर दीजिए हमें ये कार्य करना है, और इसमें दूसरे के लिए नहीं कार्य किया जा रहा, अपना ही कार्य किया जा रहा है। अब सागर में एक प्रकार से उद्यम प्रारंभ हो गया, ये शुभ लक्षण है, क्योंकि हमने मंगलाचरण ही उद्यम से ही प्रारंभ किया था। अब उद्यम नहीं उद्यम चाहिए, ताकि कदम कदम जमता चला जाए, लड़खड़ाते हुए कदम हमेशा हमेशा स्व और पर के लिए अभिशाप शुद्ध हो जाते हैं, और स्वावलंबन जीवन के माध्यम से जीवन अपने आप ही समृद्ध बन जाता, और हम स्व के लिए और पर के लिए समृद्धि के लिए कारण बने, अहिंसा परमो धर्म के।
अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।